उधर सिद्धार्थ खुराना पूरी तरह से शॉक्ड खड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर का ईगो ये सब देखकर भीतर ही भीतर खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि चलो, झलक को लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग और ड्रामा चल रहा था वो आज सबके सामने आ गया। अब आकांक्षा से शादी को लेकर उसे किसी भी तरह की हेजिटेशन या घबराहट महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि अब उसे अंदर ही अंदर ये फील हो रहा था कि उसने एक सही लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर चुना है। उसके मन में ये बात पूरी तरह बैठ चुकी थी कि झलक का कैरेक्टर सच में बिल्कुल जीरो है। इतना ही नहीं, उसने जानबूझकर आदित्य राणा को अपने जाल में फंसाया था, और अब तो ये बात भी लगभग प्रूव हो चुकी थी, क्योंकि अगर वाकई झलक का मल्होत्रा परिवार से कोई कनेक्शन होता तो क्या कविता राणा इस बात से अनजान रहती? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां तो उन्हें झलक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसका मतलब साफ था कि झलक ने खुद को मल्होत्रा बताकर भी झूठ बोला था। कुछ ही पलों में सिद्धार्थ ने अपने मन में सारे पॉइंट्स जोड़ लिए और तारीफ भरी नजरों से रणविजय की तरफ देखने लगा। उसे लग रहा था कि रणविजय ने एक ही मूव में झलक को उसकी औकात याद दिला दी। कहीं ना कहीं वो पहले से कहीं ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। फिलहाल उसे उम्मीद थी कि झलक अब जरूर कुछ बोलेगी, लेकिन झलक अब भी खामोश थी। उसकी ये साइलेंस वहां मौजूद हर इंसान की बेचैनी लगातार बढ़ाती जा रही थी। जैसे ही कविता राणा ने झलक और अनामिका की तरफ डिस्गस्ट भरी नजर से देखा, आदित्य अब खुद को रोक नहीं पाया। वो तेज कदमों से अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एंगर साफ दिखाई दे रहा था। बस माँ, बहुत हो गया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। किसी ने भी कभी आदित्य को अपनी माँ से इस लहजे में बात करते नहीं देखा था। कविता राणा ने हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखा। आदित्य? लेकिन आदित्य इस बार रुकने वाला नहीं था। उसने गुस्से से कहा, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है? बिना पूरी सच्चाई जाने आपने इन दोनों के बारे में इतना सब कैसे कह दिया? सिर्फ रणविजय की बातों पर ट्रस्ट करके आपने झलक और अनामिका के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए? उसने रणविजय की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, यही चाहता था ये आदमी कि आप यहाँ आए और इसकी झूठी बातों में आकर उन लोगों की इंसल्ट करें जिनकी रियलिटी का आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि आप इसके ट्रैप में फंस भी गईं। कविता राणा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आदित्य, अपनी माँ से बात करने की तमीज मत भूलो। आदित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों का एंगर कम नहीं हुआ। मैं अपनी लिमिट नहीं भूल रही हूँ माँ, लेकिन आप अपनी पहचान जरूर भूल गई हैं। आप हमेशा हर डिसीजन ट्रूथ और प्रूफ के आधार पर लेती थीं। फिर आज क्या हो गया? आज आपने सिर्फ एक आदमी की बात सुनकर दो लड़कियों की रिस्पेक्ट पर सवाल उठा दिया। क्या यही आपका जस्टिस है? इतना सुनते ही पूरा हॉल एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। रणविजय के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आदित्य अपनी माँ के सामने इस तरह खड़ा हो जाएगा। आदित्य ने झलक और अनामिका की तरफ देखा, फिर दोबारा अपनी माँ से बोला, माँ, आप इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अगर आपको पूरी ट्रूथ पता चल गई तो शायद आपको अपनी कही हुई हर बात पर रिग्रेट होगा। इसलिए प्लीज कोई डिसीजन लेने से पहले पूरा सच जान लीजिए। ये सुनकर कविता राणा कुछ पल के लिए चुप हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही सख्ती बनी हुई थी। तभी कबीर ने आदित्य की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाकर उसे शांत रहने का इशारा किया, मानो वो कहना चाहता हो, अपनी माँ से ऐसे बात मत करो। अभी इसी तरह की बातें चल रही थीं कि अचानक पूरे हॉल में फैले तनाव के बीच एक हल्की सी हंसी गूंज उठी। सभी की नजरें उसी दिशा में घूम गई। वो झलक थी जो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी। कुछ पल तक वो लगातार हंसती रही, फिर उसने अपनी आंखों के किनारे आए आंसू पोंछे और धीरे धीरे चलते हुए रणविजय के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। अगले ही पल उसने बड़े आराम से अपना हाथ रणविजय के कंधे पर रख दिया। उसके इस बिंदास एटीट्यूड को देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। झलक मुस्कुराते हुए बोली, वाओ रणविजय, क्या प्लान था तुम्हारा? सीरियसली, प्लानिंग के मामले में तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अभी कुछ देर पहले तक तुम कितने उछल रहे थे। तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि आज तुम मुझे सबके सामने बेइज्जत करके अपनी सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल कर लोगे। झलक की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। मानना पड़ेगा, तुमने एक एक मूव बहुत सोच समझ कर खेला। आदित्य की माँ को यहाँ बुलाना, उन्हें मेरे और अनामिका के खिलाफ भड़काना, सबके सामने हमारे कैरेक्टर पर सवाल उठवाना, वाओ, सच में दिमाग तो है तुम्हारे पास। रणविजय के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर झलक इतनी केयरफ्री क्यों है। वहीं झलक की बातों ने उर्वशी और नैना की हार्टबीट तेज कर दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर झलक इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? क्या सच में इसके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं? उर्वशी के माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आईं। नैना के चेहरे का रंग भी धीरे धीरे उड़ने लगा। दोनों के मन में एक अनजाना फियर घर करने लगा था। उधर रणविजय ने खुद को संभालते हुए सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, हंस लो झलक, जितना हंसना है हंस लो, कुछ ही मिनटों में यही हंसी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लेकिन झलक के चेहरे का कॉन्फिडेंस जरा भी कम नहीं हुआ। उसने रणविजय के कंधे से अपना हाथ हटाया, उसकी आंखों में देखते हुए रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ है रणविजय, और तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ने लगा। सोचो जब असली गेम शुरू होगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। झलक की ये बात सुनकर पूरे हॉल में एक बार फिर साइलेंस छा गया। इतने में नैना गुस्से से तमतमाती हुई आगे बढ़ी। उसकी आंखों में हेट्रेड साफ दिखाई दे रही थी। वो झलक के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया झलक, तुम्हारा ये ड्रामा अब और नहीं चलेगा। उसने उंगली उठाकर झलक की तरफ इशारा किया। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेन हो, मेरी हर तकलीफ की वजह हो, तुम मेरे उस पास्ट की निशानी हो जिसे मैं बरसों पहले हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। ये कहते कहते नैना की आवाज और भी सख्त हो गई। खबरदार, अगर मेरी आकांक्षा की शादी में जरा सा भी ड्रामा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी मुश्किलों से मेरी बेटी का घर बसा है, मैं तुम्हारी वजह से उसकी खुशियां बर्बाद नहीं होने दूंगी। नैना यही नहीं रुकी, वो लगातार झलक को खरी खोटी सुनाती रही। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए, तुमने मेरी कोख से जन्म लिया लेकिन तुम पाप की निशानी हो, अरे तुम्हें तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। ये सुनते ही पूरे हॉल में एकदम साइलेंस छा गया। आकांक्षा अपनी माँ के पीछे खड़ी हल्का सा मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि आज पहली बार झलक को सबके सामने उसकी औकात दिखाई जा रही थी। वहीं ईशान ओबेरॉय के चेहरे पर भी सेटिस्फैक्शन साफ दिखाई दे रहा था। रणविजय के होठों पर एक विक्टोरियस स्माइल फैल गई। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब झलक का पेशेंस टूट जाएगा। लेकिन झलक अब भी बिल्कुल काम खड़ी थी। उसके चेहरे पर न एंगर था, न आंसू और न ही किसी तरह की रेस्टलेसनेस। वो सिर्फ नैना को एक टक देख रही थी। उसकी ये साइलेंस वहां मौजूद हर इंसान के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। तभी पूरे हॉल में एक पावरफुल और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी ऐसा बोलने की? ये आवाज इतनी पावरफुल थी कि पूरा हॉल एक पल में शांत हो गया। सभी की नजरें एक साथ मेन एंट्रेंस की तरफ घूम गई। दरवाजे पर एक पावरफुल पर्सनैलिटी वाला शख्स खड़ा था। ब्लैक थ्री पीस सूट, चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस, आंखों में अलग ही ऑरा और चाल में ऐसा डोमिनेंस कि उसकी प्रेजेंस ने पूरे माहौल का रंग ही बदल दिया। वो और कोई नहीं, आरव मल्होत्रा था। झलक की आंखें एक पल के लिए फैल गईं।
आदित्य, कबीर और अनामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि ये मोमेंट आने वाला है।